SBS हिंदी।
दोस्तों, ज़्यादातर जब हम अपने देश को छोड़कर नए देश में आते हैं और उसे अपना घर बनाने का प्रयत्न करते हैं, तब हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं। और उसमें से एक अरमान है कि बहुत ही खुशहाल, समृद्ध और शांतिमय जिंदगी जी जाए। तो दोस्तों, इस सुख, शांति और समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है व्यक्ति का आर्थिक तौर से सलामत होना, सिक्योर होना। और हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे सलामत रास्ता होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कितनी विविधताएं हैं इसमें और क्या क्या लाभ होते हैं जब आप एक ही सेक्टर को एड्रेस करते हैं तब। और इस बात के लिए हमें जानकारी दे रहे हैं अमित जादवान जी। अमित जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरित जी।
अमित जी, सबसे पहला प्रश्न कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बहुत सलामत, बहुत सिक्योर हम भारत से ये सुनते आ रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी वो बात लागू होती है कि नहीं? और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किस तरह से काम करता है अगर हम अलग अलग सेक्टर को छोड़कर सिर्फ एक ही सेक्टर को फोकस करें?
जी हरिता जी, ये बात दुनिया के लगभग हर कोने में लागू होती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। लेकिन इसके साथ ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको ये एडवाइस देंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग एरियाज में डालें। तो मेरा कहना इस पे ये है कि प्रॉपर्टी अपने आप में, रियल एस्टेट के अंदर इतने सारे डाइवर्सिफिकेशंस मौजूद हैं कि दूसरे एरियाज में देखने की लोगों को जनरली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा ना करें, पर मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान दें, एक एरिया के अंदर एक्सपर्टीज करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको बहुत तरह तरीके के डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज इसी के अंदर मिलेंगी। और आप जो सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन से आती है, डिफरेंट मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होने की वजह से, वो आपको रियल एस्टेट के अंदर भी मिल सकती है।
अमित जी, जब तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात होती है, निवेश की बात होती है, तो अक्सर लोग उसको बहुत ही बड़ी कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गई और कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, या फिर बहुत ही छोटे मापदंड में उसको बांट देते हैं कि घर हो गया और दुकान हो गई। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधताओं की बात करें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, तो कितनी विविधताएं हैं और किस तरह से उसमें निवेश किया जा सकता है?
तो हरिता जी, जनरली डाइवर्सिफिकेशन लोगों का सीमित व्यू में रहता है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल से ज्यादा आगे बढ़ के नहीं सोचते, पर अगर आप इन दोनों एरियाज को इंडिविजुअली उठा के देखें तो रेसिडेंशियल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिनके अपने फायदे नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट करना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको एक तरीके के फायदे नुकसान देगा। वहीं सबर्बन एरियाज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आप रीजनल एरियाज की प्रॉपर्टीज में रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नए और पुराने घरों के बीच में डिफरेंशिएट करके अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसी के अंदर आपके टाउन हाउसेज आते हैं, अपार्टमेंट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल अकोमोडेशन आती है, ड्यूअल ऑक्यूपेंसी, ड्यूअल टेनेंसी प्रॉपर्टीज आती है। तो अगर आप देखें तो रेसिडेंशियल के अंदर अपने आप में इतनी डिफरेंट तरीके की प्रॉपर्टीज हैं जिनके अपने फायदे नुकसान है, जो आपको चूज करना पड़ेगा अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि कौन सा आपके लिए बढ़िया है। वहीं अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो वो सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। कमर्शियल में आप दुकान लीजिए, दूसरी रिटेल प्रीमिसेस लीजिए, ऑफिसेस की तरफ देखिए, थोड़ा सा मेन मेट्रो एरिया से बाहर निकल के देखेंगे तो कंट्री साइड में आपको मोटल्स, बेड एंड ब्रेकफास्ट अकोमोडेशन प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सर्विस स्टेशन कॉम्प्लेक्सेस, फास्ट फूड कॉम्प्लेक्सेस, कार पार्क्स, आप इवन कार पार्क स्पेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सर्विस्ड ऑफिसेस हैं, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्मिंग लैंड है, सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है और ये सारी चीजें किराए पे उठाई जाती हैं। तो दोनों एरियाज रेसिडेंशियल कमर्शियल अपने आप में बहुत वास्ट एरियाज हैं।
आपने कहा कि बहुत ही बड़े एरिया हैं, विस्तृत तरीके से हैं, सिर्फ ये छोटी छोटी बातों से हमें निकल कर बाहर जाना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि उन्हें प्रॉपर्टी के जो क्षेत्र है उसमें निवेश करना है, तो क्या लाभ है और क्या हानि है?
अगर आप किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो हानि की जब आप बात करते हैं कि रिस्क क्या है, नुकसान क्या हो सकता है, तो वो आपका सारा एक ही वर्ड पे आके सिमट जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होगा, और इंडिविजुअल सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप उस रिस्क को असेस कर सकते हैं। इसको जनरलाइज करना आसान नहीं होगा कि किसमें क्या रिस्क है, इंडिविजुअल सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसको असेस किया जा सकता है। जहां तक फायदे की बात है, मैं फायदा की बात करूंगा डाइवर्सिफिकेशन के फायदे की, कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों रिकमेंड किया जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपका आपके पास एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो जो आपको हर तरफ से कवर करके रखे और आपके रिस्क को मिनिमाइज करे। प्रॉपर्टी डाइवर्सिफिकेशन में आपके पास एक कैपिटल ग्रोथ का एंगल है, रेंटल सिक्योरिटी है, लो वैकेंसी रेट्स अगर आप एरिया टारगेट करते हैं तो आपके पास वो सिक्योरिटी है, ग्रेटर डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो सिक्योरिटी है। अगर आप लो वैकेंसी रेट एरियाज में देखेंगे तो लो टर्नओवर ऑफ टेनेंट्स की सिक्योरिटी है, पॉजिटिव यील्ड की तरफ देखेंगे तो आपको प्रॉफिट बन रहा है। अपने फेमिलियर एरिया से बाहर निकल के देखिए, ये सारी डाइवर्सिफिकेशन आपको दिखेगी। आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे तो वहां पे आपको रेंटल हाई मिलता है जनरली आपके इन्वेस्टमेंट से, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे थोड़ा सा रिस्क भी हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज अक्सर जब खाली होती है तो लंबे समय तक खाली रहती है। इसी तरीके से रेसिडेंशियल में आपको पॉजिटिव यील्ड उतनी ज्यादा नहीं मिलती, बट एक सिक्योरिटी मिलती है कि जनरली वो रेंट पे जल्दी उठ जाती हैं, चीजें बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहती। तो ये सारे मिक्स बना के जब आप अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो उसमें सिर्फ इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क मिटिगेट होके कम हो जाता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी माना जाता है।
आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सरल शब्दों में समझाया कि किस तरीके से आप अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। अमित जी, आपने SBS हिंदी के लिए समय निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद हरिंदर जी।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।